携帯はありますね。本当に使いますけど。सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल ही सयाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं के सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की,
परम पूज मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की, परम पूज मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की।
जीवन में बहुत प्रकार की भावनाएं हम भाते हैं, जिसमें कुछ भावनाएं भली होती हैं, कुछ बुरी भावनाएं भी होती हैं। कुछ भावनाएं हैं जिनको भाने से हमारा वैराग बढ़ता है, कुछ भावनाएं ऐसी हैं जिनके भाने से संसार बढ़ता है। ये निर्णय हमें स्वयं लेना है कि किस तरह की भावना भाएं जिससे कि हमारा कल्याण हो। संसार में रह करके भी हम संसार के सुख दुख से बच सकें। सारी जुगत या सारी कोशिश इस बात की है। तीर्थंकर इस संसार से बचने का उपाय स्वयं खोज लेते हैं, और इतना ही नहीं, वे दूसरे के लिए भी संसार से बचने का उपाय बताते हैं। यही उनकी विशेषता है। अपने अपने लिए तो सुख सारी दुनिया खोज लेती भैया, लेकिन प्राणी मात्र के सुख की चिंता जिसको हो, वो तो ऐसा विरला ही होता है। भरत और ऐरावत क्षेत्र में 24-24 ऐसे जीवात्मा होते हैं जो कि अपने सुख के साधन छोड़ करके और दूसरे के सुख के लिए उपाय करते हैं, और विदेह क्षेत्र में तो 160 तीर्थंकर हो तो एक साथ हो जाते हैं। ऐसे एक साथ विदेह, भरत और ऐरावत इन तीनों क्षेत्रों में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। ये सब अत्यंत पुण्यात्मा जीव हैं। अब ये पुण्यात्मा हो कैसे गए? तो इन्होंने अपने जीवन में भली भावना भाई, इसलिए हो गए। हम भी जो है भली भावना भावें। 16 कारण भावनाएं ये तीर्थंकर बनने में निमित्त बनती हैं। उसमें से अपन ने अभी तक विभिन्न प्रकार से उन भावनाओं को समझा, पर एक ही बात उसमें मुख्य है कि जैसे बने तैसे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए मन बनना चाहिए। थोड़ी देर को बनता है, लेकिन अपना थोड़ी देर को बनता है, और जिसका 24 घंटे बने, जिसका पूरे जीवन में ही बने, पर हित उपलिप्सु, जो अपने आत्म कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण के लिए चिंतित है, ऐसी करुणा का भाव ही वास्तव में हर भावना के पीछे होता है। जो श्रेष्ठ भावनाएं हैं उनमें ये करुणा का भाव, सबसे बड़ी करुणा यही है। मैत्री और करुणा की परिभाषा यही दी है कि सब जीव सुखी रहें, किसी को दुख ना हो, ये करुणा। ऐसा जो कोमल भाव है वो है करुणा, और इसके पीछे वही मुख है, चाहे जिस रूप में भी अपन उसको समझें। आज 16 कारण भावनाओं में से एक भावना अपन और समझते हैं, आवश्यक अपरिहानिक, ऐसा उसका नाम है। आवश्यकों में कमी नहीं करना, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आवश्यक किसे कहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये मनुष्य जीवन हमें इस अपने जो आवश्यक कार्य हैं उनको करने के लिए मिला है, अनावश्यक कार्यों में इस जीवन को व्यर्थ कर देना, इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला। अब आवश्यक कार्य कौन से हैं? तो हर आदमी का अपना अपना आवश्यक कार्य है। चोर आदमी का चोरी करना आवश्यक कार्य हो सकता है, और बेईमानी करने वाले का बेईमानी करना आवश्यक कार्य हो सकता है, और धर्मात्मा का धर्म करना आवश्यक कार्य हो सकता है। तो डेफिनेशन क्या है आवश्यक कार्य, क्या है आवश्यक? तो आचार्य भगवंत बड़े थोड़े से शब्दों में कह देते कि भैया वो सब आवश्यक है जिससे कि स्वपर कल्याण होता हो, बात खत्म। जिससे अपना और प्राणी मात्र का कल्याण हो ऐसा कार्य ही आवश्यक है मनुष्य के लिए, बाकी जीवों को तो ऐसा कार्य करने की सुध ही नहीं है। बताओ एक इंद्री दो इंद्री उनके लिए सुध है कि अपनों कल्याण काय में है, दूसरे को काय में है, सबको काय में है? किसकी? बिल्कुल नहीं है। मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक बता रहे हैं और किसी जीव के लिए नहीं बताया। देवताओं के लिए भी आवश्यक कार्य की चर्चा नहीं करी, नारकी को तो करी नहीं है, तिर्यंच को भी नहीं करी, जबकि सबसे ज्यादा तिर्यंच है, उनको नहीं कहा कि आवश्यक कार्य, उनके लिए बताया आवश्यक कार्य, मनुष्य के लिए बताया। देवों के लिए क्या आवश्यक कार्य है, वे तो चाहे के भी नहीं कर सकते। जो विवश है उसके लिए आवश्यक कार्य नहीं बताए, जो अवश्य है उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को आवश्यक कार्य कहा। अब ऐसी परिभाषा बने। सर्वार सिद्धि में पूज्यपाद स्वामी कहते कि जो इंद्रिय और मन के वशीभूत नहीं है उसे कहते अवश्य, और अवश्य के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य आवश्यक कहलाते हैं। लियो अपन है विवश, और जो आवश्यक करने वाला है वो है अवश्य। इंद्रिय और मन की ग्रिप में जो है वो सब विवश है, मजबूर है, अपनी इच्छाओं अपनी लालसाओं के चक्कर में ही हम मजबूर हैं। ऐसे मजबूर आदमी के द्वारा कोई भी कार्य आवश्यक तो किए नहीं जा सकता। जिसने इंद्रिय और मन की के वश में जो नहीं है, उनकी ग्रिप से जो बाहर हो गया है, उसके द्वारा किए जाने वाला कार्य आवश्यक है। ऐसी परिभाषा इस आवश्यक की बनाई गई है। फिर कहते कि जिस व्यक्ति के अंदर ये बात आ गई है कि मुझे अपने इंद्रियों और मन के वशीभूत होके कोई कार्य नहीं करना है, मुझे तो अपने और दूसरे के कल्याण की भावना से कार्य करना है, तो वो व्यक्ति अपने आप विचार करेगा कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें वो स्वयं निर्धारित कर ले। तो जिसके भीतर ऐसा विचार है कि मुझे इंद्रिय और मन के वशीभूत नहीं होना है और अपने और दूसरे के कल्याण के लिए कार्य करना है, तो समयोचित कार्य करना, एक शब्द अपन ले लें तो और आसान हो जाए। जो समयोचित है, जैसे कि अपन ने अभी एक दो दिन पहले महाराज ने हंसाने के लिए एक ठो कहानी सुना दी थी, क्या वो मूर्ख थी? अपन ने तो उसको मूर्ख कह दिया कि बहु मूर्ख हती है, कि जहां रोऊं मैं तो सोते हंसन लगे, जहां हंसने तो सोते रोऊं लगे, क्योंकि वो जानती नहीं थी। लेकिन अपन अगर जो कार्य जब करने हैं जहां करने होते ने करें, तो अपन मूर्ख कहां है कि नहीं कहां है, जा बता है? उसको तो अपन ने कह दिया कि अरे ये तो रोवे को मौका है तो तुमने हंस दो। ऐसे ही जो है, जहां हमें अपना धर्म ध्यान करने का अवसर था सो होते हम करने लगे कषाय, तो हम कौन कहलाएंगे, मूर्ख कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? बस यही तो है भैया, यहाँ इस संसार में अपने और दूसरे के कल्याण के लिए हमारा हमें जीवन मिला था, और उसकी जगह पे हम संसार का प्रपंच में पड़ गए, तो हम बताओ अज्ञानी या मूर्ख कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। बस यही बात है, जो व्यक्ति समयोचित कार्य करता है, जो समय पर आवश्यक है। अब बताओ समय पर कौन सा आवश्यक है, अब जी निर्धारित करना पड़ेगा। तो कहती गृहस्थ के लिए अलग है और साधु के लिए अलग है, दो ही तो हैं, गृहस्थ है और साधु है, तो दोनों के अलग अलग आवश्यक कार्य बता दिए। तीन कार्य आवश्यक हैं गृहस्थ के और एक कार्य आवश्यक साधु का, बताओ है कि नहीं ऐसा। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, वे तो आवश्यक हैं श्रावक के लिए, धर्म पुरुषार्थ करना है, अर्थ पुरुषार्थ करना है, काम पुरुषार्थ करना है, बताओ। यही है उसके तीन पुरुषार्थ, उसको करना है, सब समय पर करना, ध्यान रखने का। और मुनि महाराज और साधु के लिए एक ही पुरुषार्थ करना है, मोक्ष पुरुषार्थ करना है, श्रावक को मोक्ष पुरुषार्थ की भावना भानी है बस। और करना कौन सा पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, अब बताओ। जी कार्य आवश्यक है, इनसे तो संसार बढ़ेगा, कहते न बढ़ेगा, होशियारी से करो तो न बढ़े, वो मूर्खता से करो तो बढ़ेगा। तो होशियारी कौन सी है, कहते पैसा तो कमाने दुनिया कमाओ, ग्रस्त के पैसा न होवे तो ग्रस्त कोड़ी को नहीं, अगर कोड़ी न होवे तो, और साधु महाराज के कोड़ी होवे तो भी साधु कोड़ी के नहीं है। ऐसी तो परिभाषा है, अपने आचार्य श्री ने बना दी थी ये परिभाषा, कि अगर जिसके पास श्रावक हो गए और उसके पास कौड़ी न हो गए तो वो कौड़ी को नहीं है, और साधु हो गए और उसके पास कौड़ी हो गए तो वो कौड़ी भर को नहीं है, वो की कचू करली नहीं है, कि जो पैसा दे रहे हैं काय के साधु है। तो श्रावक के लिए तो अर्थ पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, लेकिन वो अर्थ पुरुषार्थ उसके कर्मों की निर्जरा का कारण भी बन सकता है, और वो ही कर्मों के बंध का कारण बन सकता है। अगर नीति न्याय को छोड़ के किया जाएगा अर्थ पुरुषार्थ, तो सब पाप का कारण है, और नीति न्याय पूर्वक किया जाए, धर्म पूर्वक किया जाए, तो वही व्यक्ति के लिए कल्याण का। अब बताइएगा है समयोचित कार्य के नहीं। ये था आवश्यक, व्यापार करना कौन मना करता है, पैसे कमाने की कौन मना कर रहा है, कहीं नहीं लिखा, अर्थ पुरुषार्थ करने का लिखा, लेकिन पैसा धन संपत्ति और लक्ष्मी में बहुत अंतर है। जो नीति न्याय से घर में आवे सो समझना लक्ष्मी जी, और जो बेईमानी से आवे सो धन पैसा और संपदा, ये सी परिभाषा है, हम अपने मन से नहीं बोल रहे, लिखी संपदा है नीता। आपको कम पढ़ने की आदत है तो हम आपको मदद कर रहे हैं, हम कि आप भी ये चीजें जानो, आप कि सब लिखी है धनी, ऐसी परिभाषा। तो अर्थ पुरुषार्थ करना भी हमारे लिए कल्याण, और काम पुरुषार्थ जिससे संसार बढ़ता है, बताइए आप, व्याह करना, बेटे संतति उत्पन्न करना, ये सब उसी में आता है, काम पुरुषार्थ, घर गृहस्थी के कार्य करना, संसार के सब कार्य करना। लेकिन कहते कि अगर इसमें जो है हम धर्म भूल जाएंगे तो ये सब पाप का कारण है, और धर्म स्मरण में रखा मैंने जिससे विवाह किया है, उसके अलावा बाकी सबके प्रति मेरे मन में निर्मल भाव है, ये हो गया मेरा धर्म पूर्वक विवाह करना। और अब जो मुझे संतति उत्पन्न होगी सो मेरे भोग विलास की आकांक्षा तो पूरी होगी ही, लेकिन मैं तो अपने उस भोग विलास की आकांक्षा पूरी करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं तो ऐसी संतति पैदा करूं जिससे धर्म की परंपरा और कुल की परंपरा दोनों आगे बढ़े, इसलिए मुझे काम पुरुषार्थ करना है। लेकिन अपन दोनों जगह गड़बड़ा जाते हैं, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ के पहले इसलिए धर्म पुरुषार्थ रखा, धर्म पुरुषार्थ पूर्वक अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ हो गए तो जितनी कर्मों की निर्जरा मंदिर में हो रही उतनी जो है दुकान पे बैठ के हो सकती, और मंदिर में कमती हो गए अगर दुकान को ध्यान बनो रह गए, और दुकान में ज्यादा हो सकत अगर मंदिर को ध्यान बनो रह गए। जी कह रहे हैं हम आपसे आवश्यक क्या है, जो जिसके लिए आवश्यक है नीति न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक किया जाए, स्वपर कल्याण की भावना से किया जाए, तो देखिएगा वही चीज कल्याणकारी हो जाती। अपने इंद्रिय और मन सबको मिले हैं, उनका जो व्यक्ति जितना सदुपयोग करता है, इन पुरुषार्थों में उनका सदुपयोग ही होगा और क्या होगा। तीनों पुरुषार्थ करना है, लेकिन अपने इंद्रिय और मन का सदुपयोग करना है, उसका समायोजन करना है कि कैसे मुझे आंख मिली है तो संसार में बुरा देखना कि भला देखना, ये मेरी अपनी चॉइस है, ये मेरा अपना निर्णय है, मुझे स्वयं करना है। कान मिले हैं तो दूसरे की निंदा सुननी है और अपनी प्रशंसा सुननी है, या कि अपनी निंदा और दूसरे की प्रशंसा सुननी है। अपनी निंदा सुनने को ये कान कितने तत्पर रहते हैं, उल्टा उल्टा मामला है। अपनी प्रशंसा सुनने और दूसरे की निंदा सुनने के लिए कानों का उपयोग, जीवन में हिसाब तो लगाना एक आध दिन बैठ करके कि 24 घंटा में कितने हमारे घंटा दूसरे की निंदा सुनवे और अपनी प्रशंसा सुनवे, खुद लालायत रहे हमारे कान, हिसाब लगा मैंने इन इंद्रिय और मन का कितना सदुपयोग किया है, कितना दुरुपयोग किया है। जो कार्य इनसे लेने का था वो किया कि नहीं किया, कि इनसे मिथ्या ही कार्य किया, तो फिर हम अवश्य कहलाएं। जो व्यक्ति इंद्रिय मन का सदुपयोग करता है वो समझना कि इंद्रिय और मन के वश में नहीं है, और वही व्यक्ति जो करेगा वो सब उसका आवश्यक है। ऐसी भावना जिसके भीतर है, मैं अपने जीवन का सदुपयोग करूं और इन पुरुषार्थों को धर्म पूर्वक करूं, ऐसी जिसकी निरंतर भावना है, इस भावना से जो व्यक्ति कार्य करता है वो सब उसके आवश्यक कार्य हैं, और उनसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। अकेले इंद्रिय मन का सदुपयोग करने से बताइए, और अगर चूक गए तो कहते ना अपन, दुर्लभता क्यों है, इसलिए दुर्लभता है क्योंकि चूकने के बाद फिर से चांसेस कम है और कुछ नहीं। मुझे तो यही समझ में आया, नहीं तो जनसंख्या तो इतनी बढ़ रही तो कौन सी विशेषता हो गई मनुष्य पर्याय में, इतने तो मनुष्य हो रहे, पैदा हो चले जा रहे, लेकिन कितना पैदा हो जाए अगर वे अपने इस मनुष्य पर्याय के अवसर का लाभ न लेवे तो उनके भय नए भय को कासार का भोजा होता। मनुष्य भाव तो मिला है, दुर्लभ इसलिए है क्योंकि मैंने अवसर का लाभ उठा लिया तो मेरे लिए वो दुर्लभता सार्थक हो गई, नहीं तो अब दूसरी बार नहीं मिलेगा। क्योंकि अधिकतम 2000 सागर का समय त्रस पर्याय का मिलता है, उसमें से भी अधिकांश समय स्वर्गों में निकल जाता है, व्रत नियम नहीं ले सकते, तिरंच में निकल जाता है। मनुष्य के 48 भाव हैं, 48 में भी 16-16 तीनों के लिए मिलते हैं। स्त्री पर्याय मिलेगी, पुरुष की पर्याय मिलेगी, नपुंसक की पर्याय मिलेगी, 16-16 भाव मिलेंगे। लगातार भी मिलें तो मिल सकते हैं और अलग अलग मिलें तो भी मिल सकते हैं, और अपन को पता नहीं है कि ये जो पर्याय मिली है ये आखिरी है या कि अब शुरू भाई है, ये नहीं कह सकते। और अगर आखिरी हुई तो इसके बाद 2000 सागर का पूरा होने के बाद नियम से आप नहीं भी चाहोगे तब भी निगोद जाना पड़ेगा अनंत काल के लिए, फिर कोई चांसेस नहीं, नो पॉसिबिलिटीज एट ऑल, कहीं कोई संभावना नहीं। इसके बाद आप चाहे कितने ही कुछ भी कर लीजिएगा, तो इसलिए ये दुर्लभ है। और ये अवसर अगर हमारा अपने आवश्यक कार्य करने में नहीं लगा और अनावश्यक कार्य, 24 घंटे में अगर थोड़ा सा अपन लोग बहुत कंसंट्रेट होकर के बैठ के देखें कि कितना आवश्यक था और अनावश्यक कितना था, तो आश्चर्य होगा अपन को कि अनावश्यक ज्यादा ही कर बैठे हैं, आवश्यक तो बहुत थोड़ा सा किया। अपने जीवन को समायोजित करना, व्यवस्थित करना बहुत कठिन है। अगर दुर्लभता समझ में आएगी तो ऑटोमेटिकली बहुत अरेंज हो जाएगा, बहुत मेंटेन करके लाइफ चलेंगे अगर दुर्लभ मानेंगे, और अगर दुर्लभता का एहसास नहीं है तो फिर तो एनी हाउ जिस तरह भी जीवन, बस चलना चाहिए गाड़ी तो चल जाएगी। अकबर और बीरबल का बहुत अच्छा एक किस्सा आता है, सबको मेरे ख्याल से मालूम भी होगा, पर अपन फिर से उसको रिवाइज कर रहे हैं। अकबर ने पूछ लिया सब बीरबल से कि बीरबल अच्छा ये बताओ 27 में से 10 गए कितने बचे, बाकी सबसे पूछा तो सबने आंसर दे दिया, सीधा सीधा मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन है, 27 माइनस 10 इज इक्वल टू 17। सीधा सीधा 27 में से 10 गए 17 बचे। कोई बुद्धू होगा तो बता देगा, वो कल बच्चे लोग थे उसमें से कोई बता देगा छोटे से। लेकिन बीरबल काल का ही हिसाब, उन्होंने कहा कुछ नहीं बचेगा। अच्छी अजीब आदमी, फिर से सोच लो कौन स्कूल में पढ़े तुम्हारे गुरु जी को बुलवाए है। अरे 27 में से 10 चले जाएंगे तो कोई बता देगा। कहते सुनो ऐसा हिसाब नहीं है, 27 में से 10 जाएंगे कुछ नहीं बचेगा। कहना क्या चाहते, कहना ये चाहते हम कि 27 नक्षत्र हैं, साल भर में 27 नक्षत्र होते हैं जिनमें से 10 नक्षत्र होते हैं जिनमें की वर्षा होती है मगा, और बे अगर खाली निकल गए 10 तो जीरो है मामला, भोजनों तक को से जो ना हुए हाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर वो खाली नहीं जाना चाहिए। तो ये गणित जैसे वो कह रहे हैं कि वहां उस संसार में जो कीमती नक्षत्र हैं उनमें अगर बारिश नहीं होगी तो सब चौपट है। ऐसे ही 84 लाख योनियों में जो बहुत रेयर है मनुष्य पर्याय, उसमें अगर हम चूक गए तो कोई संभावना कहीं नहीं। ऐसा फील होना चाहिए, ऐसा खुद हमारे कहने वहने से नहीं, सुनते तो सब हैं और सबको मालूम है, लेकिन जिस दिन हमें फील हो, जैसे अभी कहा गया था कि विचार तो सब बहुत पुराने हैं लेकिन जब वे अमल में आ जाएं तो समझना कि नई बात है, और बाकी तो सब पुरानी बातें। रोज अपन सुनते हैं, रोज यहां से उठ के चले जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं कि फिर सुनेंगे, लेकिन इसमें से जितना जितना अमल में आता जाता है वो बिल्कुल एकदम पहली बार है मान करके चलिए, बाकी सब तो कई कई बार हो चुका। अब आवश्यक जरा थोड़े तो समझ में आए होंगे कि अपन को इंद्री मन का सदुपयोग करना चाहिए भैया, जो काम करने का है सपर कल्याण का है वो कर लेना चाहिए। तो अब कौन कौन से आवश्यक हैं, छह छह आवश्यक दोनों के डिसाइड कर दिए पहले से ही, क्या सुविधा ना बताने के लिए। और तो वैसे मुख्य बात तो यही है कि इंद्रिय और मन का सदुपयोग करना है, लेकिन जैसे किसी को कहा जाए कि ये करना है तो नहीं समझ में आता है, फिर उसको बताना पड़ता कि ऐसे करो, ऐसे करने से तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हारे इंद्रिय मन का सदुपयोग अगर तुम ये काम करो तो अपने आप हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि क्रोध छोड़ना बहुत कठिन है लेकिन क्रोध के निमित्त से बचो, ऐसे कहने में ज्यादा आसानी होती। भैया तुम उनके संग न रहो करे, क्यों? अब तुम कह रहे थे हमें गुस्सा आ जाती है तो उनके साथ तो जल्दी आई गुस्सा, इसलिए हम कह रहे तुम्हें गुस्सा अगर नहीं करनी है तो उन चीजों से बचो, या फिर उन चीजों में लगे रहो जिनसे कि गुस्सा आने के चांसेस कम है, या कि उन चीजों से दूर रहो जिनसे कि आने के चांसेस ज्यादा थे। बस दो ही उपाय होते हैं। तो छह छह आवश्यक बता दिए कि इन कामों में अपने को एंगेज करे रहो तो अपने आप इंद्री मन का सदुपयोग होगा, उसकी ग्रिप से बाहर हो जाओगे इंद्री मन की, और वास्तव में जीवन का कल्याण करने का उपाय तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। श्रावक के लिए देव पूजा, गुरु पास्ती, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, षटकर्माणी दिने दिने, रोज रोज इन छह कर्मों को करते रहना है, इनमें हमारे इंद्रिय और मन का सदुपयोग होगा। बाकी जितनी देर इनसे हम दूर रहेंगे उतनी देर सिवाय दुरुपयोग के अनावश्यक कार्य की और कुछ नहीं होना, आवश्यक कार्य तो यही है। सो इनके लिए भी अपन करते तो हैं, लेकिन कहा था 24 घंटे करने के लिए, सो अपन ये सब 5 मिनट में निपटा करके फिर फ्री कर तो रहे हमने 6 आवश्यक, ऐसा नहीं है। सुबेरे से स्कूल लगी है 8 बजे से 4 बजे तक, तो 6 पीरियड पढ़ने हैं, सबको अपनो अपनो समय है। ऐसा नहीं कि तुमने घंटा भर में 6 ही पढ़े हो बाकी खेलत रहे, कह ले हम तो पढ़े आए 6 ही पीरियड पढ़े हैं, नहीं है। 24 घंटे में ये 6 ही काम है, इसके अलावा 7वां कोई आवश्यक है ही नहीं, 6 ही आवश्यक। भगवान की पूजा करना कितनी देर, 1 घंटे, 24 घंटे, भगवान के गुणों का स्मरण बना रहना उनकी पूजा है। वो मेरे अंदर 24 घंटे रहे, दुकान पे बैठा हूं तब भी और रोटी बना रहा हूं तब भी, और बाजार में किसी से बात कर रहा हूं तब भी, और मंदिर में बैठा हूं तब तो है ही। भगवान के गुणों के प्रति अनुराग बना रहे यही पूजा है। वो घंटे भर यहां की जाएगी, 24 घंटे नहीं की जाएगी कि 24 घंटे करो, नहीं तो और उपद्रव कल से खड़ो कर दो, कि महाराज ने कही थी कि वो तो हमेशा करत रहो, सो रात को 12 बजे नींद खुल जाए तो अपने द्रव्य लेके आ गए कि हम तो पूजा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं। गुणों का स्मरण ही पूजा है। देव पूजा गुरु पास्ती, गुरु को अपने निकट महसूस करना। गुरु को निकट महसूस करना मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निकटता। मेरी श्रद्धा बनी है कि नहीं, मेरा विवेक है कि नहीं, मेरी क्रियाएं दुरुस्त हैं कि नहीं, ऐसा हमेशा ध्यान बना रहे, ये गुरु पास्ती हो गई। बड़े अलग तरह के अर्थ बता रहा हूं आपको, नहीं तो वो तो बहुत आसान है। ठीक है, महाराज के पास वो तो आए थे, सुवीर तो गए थे, लेकिन वे हमारे पास हमेशा रहे, हमारा हाथ पकड़ते रहे कि क्या कर रहे हो तुम, ये गड़बड़ कर रहे हो। हाँ, ऐसा स्वयं एक व्यक्ति हैं जो अभी भी कहते हैं, उनकी बड़ी श्रद्धा वर्णी जी के प्रति। वो कहते, महाराज जब भी मेरे से कुछ गलत होता है, मुझे कोई कहे चाहे नहीं कहे, मेरी अंतरात्मा से आवाज होती कि वर्णी जी होते तो का कहते कि काय भैया तुमने आ करो ऐसो। वर्णी जी इतना ही कहते थे, जिसके प्रति उनका अनुराग होता था और जिस व्यक्ति का उनके प्रति अनुराग होता था, सो उस व्यक्ति से अगर कोई व्यक्ति आके उसके बारे में कहे कि फलाने तो ऐसो करो, तो वो जब पास में आता था सो और कुछ नहीं कहते थे, ये भैया अपन को ऐसो नहीं कर, वे कहते कि तुमने ऐसो करो, अपन को नहीं करना, न करो हो तो, और करो हो तो हमारा उपदेश जो ही है कि अपन को नहीं करना। तो वो कहते कि अभी भी हमारे मन में यही आवाज आती है कि ऐसा कार्य करने पर हम वर्णी जी होते तो क्या कहते, जय कहते कि देखो अपन तुमने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना। ये कहलाती गुरु पास्ती। सामने सामने मुंह देखी नहीं, पीठ पीछे भी जो है और ऐसा ही भाव बना रहे, ये आवश्यक है। संसार के सब कार्यों के बीच भी स्मरण बना रहे। और शास्त्र स्वाध्याय तो अपन कितनी देर करेंगे भैया, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे वचन का कर लेंगे, प्रवचन सुन लेंगे घंटे भर, पर याद बना रहे कि क्या था उपदेश। उपदेश यही था कि राग द्वेष घटाना चाहिए, हो गया काम। मुंह से बचना चाहिए, आसक्ति से बचना चाहिए, यही धर्म का उपदेश है। सो हमेशा याद रहे बस, और क्या करना। अब चाहे तुम ग्रंथ पलटते हुए याद रखो, चाहे ग्रंथ बंद करके घर बैठे रोटी बना रहे उस समय याद रखो, दोनों जगह वो तो वाणी तो आपके भीतर ही है कि राग देश से बचना, अपने को संसार के प्रपंच में नहीं पड़ना। ये उपदेश हमेशा बना रहे, 24 घंटे बना रहता क्या। संयम, आत्मनियंत्रण, कोई कहे किसी खराब चीज से मना करे, उसके पहले ही हमने अपने आप को संभाल लिया। अपनी मर्यादा खुद निर्धारित कर लेना, बस मर्यादाओं का निर्धारण करना, आत्मानुशासित होना, यही संयम है। और अपनी इच्छाओं को काबू में रखना, यही तपस्या है। और अपने पास जो अतिरिक्त है और दूसरे का उपकार होता जान करके अपनी चीज दूसरे को देने का परिणाम बनाए रखना कि का करने, जोड़ जोड़ के को के काम में आ जाती तो हम तो दे देते। आपके शिविर से आप खो, चाहे लाभ भाव हो चाहे न भाव, हमारी किताबें बहुत धनी थी जो सब चली गई, खाली हो गए, हमें बड़ी प्रसन्नता। अभी पेन बांट भी भय थे, उनने अभी 100-150 होते कि जी महाराज आप दे दियो, बच्चों ही को हम कौन को बुला के देवेंगे, जी देना बहुत कठिन है, लेने वाला नहीं होगा तो सबरो हिसाब किताब धरे रह जाए, धरे रहो आप सेंत के। ऐसा मन में भाव आवे कि जी जो जोड़ जोड़ के हमने धरा है या हमारे पास जुड़ गया है, सो को मिल तो जातो, अच्छा पात्र मिल जाता, मैं उसको दे देता। अरे देने का भाव हमेशा बना रहे, यही तो दान है। 24 घंटे मैं तो अर्जित तो कर रहा हूं, लेकिन ये अर्जित किया हुआ सदुपयोग होगा तब तो अर्जित किया हुआ सार्थक है, न मूल पे धर के को ले जाए है, जा तो बताओ। यही तो दान है, और कौन सा दान है बताइए आप। ऐसे 6 आवश्यक हैं, ये श्रावक के लिए कहे गए, साधु के भी 6 आवश्यक हैं। अब उनकी चर्चा लंबी हो जाएगी, 9:30 बज गए, कहो तो कर दें, का है कर ही दें, क्योंकि फिर अटकाव ने 2 भावनाएं रह गई, सो फिर 2 और कर दें हैं। और फिर उसके बाद जो है अभी कर्म सिद्धांत का मामला भी पड़ा है, अभी नाम कर्म की प्रकृतियों में तीर्थंकर प्रकृति पे अटके अपन, अभी और 2 प्रकृतियां और बाकी हैं वो भी करना है। है। तो छह आवश्यक में कोई, जैसे अपन ने ये छह आवश्यक समझे ऐसे ही है साधु के लिए। साधु के आप समझ के क्या करोगे, मनो फिर भी समझ लो, देखत रहना चाहिए कि महाराज जी सब काम कर रहे कि नहीं। हमारे मन को काम कर दो सो महाराज अच्छे हैं, जा तो दुनिया की रीत है भैया। हाँ, जा तो दुनिया की रीत है। तुम आए सो हमने तुमसे दो मीठी बातें कर ली, सो हम अच्छे कहान लगे कि महाराज अच्छे हैं, और हम तुम्हें समय नहीं दे पाए सो महाराज काहे के अच्छे हो, काहे को उनको का। सीधी सीधी जो जो तो हमेशा की को नई बात थोड़ी है, ये तो हम भी जानते वर्षों हो गए, लेकिन ये देखना कि हमारे महाराज जी हैं, हमारे महाराज जी ये छह चीजें करते हैं, देखो आप समय से करते हैं। सामायिक, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, और हम ही भूल गए बताओ, याद दिलाओ कोई भी, ठहरो वैसा नहीं हमारे हिसाब से। सबसे पहले समता, मतलब सामायिक, छह डाला के हिसाब से न कह करके हम सोच रहे थे। सामायिकम परिक्रमणम पच्चखानम, इस तरह से कोई है याद नहीं है। सामायिक करना, प्रतिक्रमण करना, प्रत्याख्यान करना, क्योंकि छह ढाला में जो दिए हैं चलो उसी से कर लो, उसकी गलती मालूम पड़ जाएगी। दौलत राम जी ने ठीक नहीं लिखा, उनको भी मालूम नहीं था सही, उनने बोला सो उसको शुरू कर ले। समता संहारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव को, नित करे प्रत्याख्यान, प्रतिक्रम तजे तन आमे को, ऐसी लाइन है। सो श्रुति रति करें, स्वाध्याय नाम का कोई आवश्यक नहीं है मुनि महाराज के लिए, ध्यान रखना। इसलिए हम वो वाली लाइन नहीं बोलना चाह रहे थे कि उस हिसाब से करेंगे, तो वो कुंद कुंद स्वामी के हिसाब से छह आवश्यक हैं कि सामायिक करना, स्तुति करना, वंदना करना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग। ये छह आवश्यक दिन भर में मुनि महाराज 24 घंटे करते रहते हैं। समय समय पर देखिएगा आप, अगर थोड़ा सा गौर करके, सामायिक हमेशा समता पर नाम, कछु हाथ पे हाथ धर के और मुंह नीची करके और आंखें बंद कर वो बैठ भी को नाम सामायिक नहीं है। जय सामायिक तो तीन संध्या काल में करी जाओ। सामायिक का मतलब है कि सुख दुख हर स्थिति में समता भाव रखना, शत्रु मित्र में भी समान भाव रखना, ये समता है जो 24 घंटे बनी रहो चाहिए, तो साधु है, और नहीं तो अबे कोशिश में है साधु बनवे की। हाँ, पूरी तरह अगर पालन नहीं हो रहा है तो यही समझना कि अबे कोशिश में है, अबे पूरी तरह हुआ नहीं है। शत्रु मित्र, हर्ष विषाद, सब में समान भाव, बहुत कठिन है। लाभ और अलाभ में, जय और पराजय में, निंदा और प्रशंसा में, सम लोठ कांचन, सोने और उसके टुकड़े में, पत्थर के टुकड़े में समान भाव, बहुत कठिन है। ऐसी समता आवे और थुति उचारें, 24 घंटे भगवान की वंदना करने का भाव बना रहे और भगवान के गुणगान करना, 24 तीर्थंकरों का गुणगान करना स्तवन है, और एक भगवान के स्तवन पूर्वक प्रणाम इत्यादि वंदना करना, ये वंदना नाम का आवश्यक है। और प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, अपने दोषों के निराकरण के लिए तुरंत तैयार रहना और आगे नहीं करूंगा इस प्रकार का संकल्प करना, और चाहे स्वाध्याय करें, चाहे सामायिक करें, चाहे कोई भी कार्य करें, शरीर से ममत्व छोड़ करके पंच परमेश जी का स्मरण करना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। 24 घंटे यही प्रक्रिया चलती रहती है, इसमें स्वाध्याय कहीं नहीं रखा। इसलिए दौलत राम जी की वो जो लाइन है कि नित करें श्रुति रति है, वो लाइन जो है आचार्य श्री ने कहा कि इसको ठीक कर लेना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी के अनुसार तो छह आवश्यकों में प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग है और स्तुति वंदना, और आप देखते हैं कि मुनि महाराज क्या करते हैं, यही कार्य तो करते रहते हैं। और इन सब में, दोनों के आवश्यकों में अगर संक्षेप करना चाहें तो कहते श्रावक दान और पूजा करे सो उसका काम हो गया, और साधु क्या करे, कहते हमेशा समता बनाए रखे सो उसके सब आवश्यक हो गए। आचार्य श्री तो ऐसा समझाते कि जैसे किसी के पास में करोड़ों रुपया है, तो वो करोड़ रुपया रोज थोड़ू गिने, वो तो चाबी भर देख लेते कि चाबी ठीक से धरी सो सब सुरक्षित है। और ऐसे ही जो है समता सुरक्षित है तो सारे गुण सुरक्षित हैं, और शावक के दान पूजा के भाव सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित है। इतना ही दोनों के लिए कहा, इन आवश्यकों के करने में जो कमी नहीं करता है, आवश्यक अपरिहार्य, वो कहलाती सोलह कारण भावनाओं में। ये चौदहवें नंबर की भावना है, पंद्रहवीं सोलहवीं दो और बची अपने पास में। इस प्रकार इस भावना के मेरे आवश्यक कार्य करने में मैं कमी नहीं करूं, प्रमाद नहीं करूं, आलस नहीं करूं, उत्साह पूर्वक करना, यह अब हमारे जी खो जा सामाय कर भी डरी, ऐसा नहीं, मजबूरी थोड़ी है। हाँ, ऐसा कोई बिगाड़ थोड़ी टालना है, कितनी नहीं, उत्साह पूर्वक और आलस भी नहीं, समय से जो है उसको करना। आवश्यकों को, जो आवश्यकों में कमी नहीं करता है, हमेशा अपने आवश्यक करने में तत्पर रहता है, उत्साह पूर्वक करता है, भावना भाता है, उसे जो है तीर्थंकर प्रकृति बनती है। अपन भावना भाएं कि भैया जो हमारे लिए भगवान ने आवश्यक कार्य करने को कहे हैं सो हम उनमें कोई कमी ना करें, और हम निरंतर जो है उत्साह पूर्वक अपने आवश्यक कार्यों को पूरा करें, उसी में हमारा कल्याण है। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर ने, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह लग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, समतारस पान किया करते, सुख दुख दानों की घड़ियों में
जी।
वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो जिन वाणी भारती तो जपो दिन रे जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन कुले जिन ग्रहे
ओम के परम पूज्य स्वामी महाराज के पावन चरणों में अनंत पद प्राप्त आगम में स्वाहा।